खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम सब खुदावंद अपने खुदा के जुड़ चुके ताकि आज का जो मकाशफा जो ताज़ा मन है, जैसे खुदावंद खुदा हर रोज बनी इसराइल कौम के लिए जब वो बियाबान में थी आसमानी मन जो उसकी उनकी जिस्मानी खुराक थी, आज हम सब अपने लिए आसमानी मन जो यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, हम सब अपने लिए इस रूहानी खुराक को मांगेंगे ताकि यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया है कि हम इस रोटी से खाया करें जो खुदा का जिंदा कलाम है। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आज की सुबह तेरे हजूर आता हूं खुदावंद तमाम बहनों भाइयों के साथ, बच्चों बुजुर्गों के साथ, कि आज जो कलाम की रोटी मैंने खाई है जिससे मैं सेर हुआ हूं, खुदावंद उस कलाम की रोटी में से खुदावंद आज तेरे लोगों के साथ नोश करने वाला बनूं ताकि हर एक की रूहानी तंदुरुस्ती हो, ताकि हम इस जमीन पर रहते हुए रूहानी तौर पर कमजोर ना हो बल्कि तेरे जोर से भरते जाएं, तेरी हिकमत और तेरी दनाई से खुदावंद मामूर होते जाएं, ताकि तेरे फहम तेरे खिर्द की खुदाओं खुदा मकाशवाती बातों को जाने ताकि जमीन पर अपनी जिंदगी को गुजार सकें। यीशु मसीह के नाम में यह दुआ मांगता हूं, आमीन। जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं पढ़ सकते हैं मेरे साथ, निकाले नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 10 बाप हम उसकी पहली चंद आयात को पढ़ेंगे और आज इसमें से सीखेंगे अपनी रूहानी तंदुरुस्ती के लिए। और याद रहे कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो खुदा ने हमें सुनने का क्या दिया है, ये शरफ बख्शा है कि हम उसके कलाम को सुन सकें। सो लूका 10 बाप उसकी पहली आयत में ये लिखा है, इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकरर किए और जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपने फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच भेजता हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमने पिछले दिनों में 70 के अदद पर गौर की थी, उसके बड़े साथ हमने तफसील के साथ बड़ी तहकीक और तफशीश के साथ पुराने अहदनामा में देखा कि 70 बुजुर्ग 70 शगीर्द 70 साल उन्होंने बाबली हुकूमत के दौरान कैदखाना में गुजारे और उसके बाद बहुत सा अगर आप तलाश करना शुरू करें तो 70 का अदद हमें मिलता है। सो आज मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जब इन 70 को मुकरर किया तो उनको एक एक करके नहीं, तीन तीन करके नहीं, या पूरी टीम बनाकर एक जगह नहीं भेजा। यहां पर जो गौर करने की बात वो क्या है कि जिन शहरों जिन जगहों पर यीशु खुद जाना चाहता था उसने क्या किया जी, इन 70 को मुकरर किया। और खासल खास बहुत दफा सवाल उठाते हैं कि क्यों खुदावन ने एक ही को नहीं भेजा, क्यों खुदा ने 5 को नहीं भेजा, क्या वजह थी कि उसने 2-2 करके एक टीम बनाकर 2-2 की भेजी। आज हम इस पर गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में 2 के अदद का मतलब है और इसके मायने में आपको बताऊंगा, इसका मतलब है मुत्तहिद होना, मिलकर एक होना, जिसके मायने निकलते हैं शादी, एतफाक, मुत्तफिका होना, या यूनिटी, या जिसे कहते हैं जी मिलकर किसी हुक्म की ताबेदारी करना। सो जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि 2 की गवाही की तरफ कि उसकी हकीकत में जो तस्दीक पाई जाती है वो इस बात की गवाही और शहादत है कि कादरे मुतलक खुदावन खुदा एतफाक एतहाद और यूनिटी का खुदा है। जैसा कि पदेश की किताब में जब हम देखते हैं कि आदम और हवा को खुदा ने एक बनाया, वहां पर हम दो बाप में जब देखते हैं उसकी 23वीं और 24वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकली है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। यहां पर वो हमें लफ्ज मिलता है एक होना, और वो एक तन होंगे। दो का अदद का मतलब क्या है? यूनिटी, अतफाक या एतहाद या किसी बात या किसी मकसद के लिए मुत्तफिक होना। पुराने अहदनामा में शहादत दी गई थी कि कोई भी गवाही, कोई भी मुकदमा अगर किसी के खिलाफ किया जाए तो दो लोगों की गवाही सच्ची गवाही मानी जाए, वरना उसको सच ना माना जाए। इसलिए पुराने अहदनामा में हम दो के अदद को देखते हैं, वैसे ही नए अहदनामा में यीशु मसीह ने कलीसिया और चर्च के दरमियान क्या किया है? एतहाद, एतफाक और शादी करवा दी। यानी कि हम जो कोई पहचान, कोई फौकियत, कोई दर्जा, कोई मर्तबा नहीं रखते थे, उसने सलीब के वसीला से, सलीब पर मसलूब होकर उन लोगों को जो कौम नहीं थे, उन लोगों को जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनको कोई जाबते या अहकाम नहीं दिए गए थे, जो पहले दूर थे, उन सबको क्या बना लिया? एक तन बना दिया। जिसके लिए हम पहला करंथियों जब 12वां बाब पूरा का पूरा देखते हैं तो हमें सीखने को मिलता है, लेकिन मैं आपकी गौर करवाना चाहता हूं 25, 26 और 27वीं आयत में। पहला करंथियों 12 बाब जब हम 25वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, ताके बदन में तफरका ना पड़े, बल्कि अजा एक दूसरे की बराबर, अजू एक दूसरे की क्या करें जी, अज एक दूसरे की क्या करें जी, फिक्र करें। अज से मुराद है यानी कि जिस्म के हिस्से। बायां हाथ दाएं हाथ की मुखालफत नहीं कर सकता, वरना क्या होगा? जिस्म में तफरका होगा, नातफाकी होगी, उनमें क्या नहीं होगा जी, एक पान नहीं होगा, उनमें नातफाकी होगी। इसीलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, पस अगर एक अजू दुख पाए। हम सब इस बात की शहादत और गवाही दे सकते हैं कि हम में से अगर किसी का बदन, हमारी उंगली को चोट लगे तो सारा बदन क्या करता है जी, उसे महसूस करता है। सो पालूस कहता है, पास अगर एक अजू दुख पाए तो सब अजा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक अजू इज्जत पाए तो सब अजा उसके साथ खुश होते हैं। अगर हमारा बदन तंदुरुस्त है तो हम क्या हैं जी, खुश हैं, खुदा के शुक्रगुजार हैं। अगर हमारे बदन में बीमारी आ जाए तो बहुत दफा हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं कि मेरा बाजू, मेरी टांग, मेरी बीमारी, मेरी किडनी, मेरा गुर्दा, मेरा दिल, मेरा ब्लड प्रेशर और बहुत सी दूसरी बातें। सो पालूस रसूल ने अहदनामा में कहता है कि जैसे पुराने अहदनामा में खुदा ने आदम और हवा को लिया, एक कर दिया, वैसे ही नए अहदनामा में उस पुराने आदम ने, जिसे पिछला आदम यानी कि यीशु मसीह कहते हैं, उसने क्या किया जी, कि हम सब को अपना बदन बना लिया। पुराने अहदनामा में आदम को खुदा ने जब बनाया तो उसकी पसली में से क्या निकाला जी, हवा को निकाला, ताकि वो उसकी क्या हो, बीवी हो, वो एक तन हो। जब यीशु मसीह मसलूब किया जा रहा था तो यीशु मसीह के ऊपर बड़े जुल्म और सतम किए गए, उसके पांव में कील लगा दिए गए, जो इस बात की तरफ इशारा है कि उसने रास्ता बनाया, उसके हाथों में कील लगा दिए यानी कि गुनाह के बायस जो आदम और हवा ने नाफरमानी की, उसके बायस जो दूरी थी, वो दूरी को दूर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथों में कील ठकवाए, ताकि वो हमसे दोबारा मेल मिलाप कर ले। उसके सर पर कांटों का ताज रखने की वजह क्या थी? ताकि हमारी सोच, हमारे सोचने का नजरिया, तरीका और हमारा मेयार पुरानी इंसानियत में ना सोचे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का बदन, उसमें एक होते हुए हम यीशु की तरह सोच सकें। जैसे पालूस रसूल कहता है फिलिप्पियों 2 बाब उसकी 5 में कि वैसा ही मजाज, मजाज से मुराद है वैसा ही सोचने का तरीका, हमारा परखने का तरीका, हमारा चीजों का तजर्बा करने का तरीका और सोचने की जो कह सकते हैं कि म्यार कैसा हो, पूरी आयत में लिखा है वैसा ही मजाज रखो, वैसा ही सोचने का तरीका कार रखो जैसा मसीह यसू का भी था। तो जब सर पर कांटों का ताज रखा गया तो उसने हमारी उन तमाम रूहानी गलफलतों को, उन तारीकियों को दूर करके क्या किया, हमारे जहनों को रोशन कर दिया, हमारी अकलों को फहम से नवाज दिया अपने पाक रूह के वसीला से। और जब हम उसकी पसली को देखते हैं कि उसकी पसली छेदी गई, जैसे आदम पहले आदम की पसली निकालकर हवा तैयार की गई ताकि वो एक बदन हो, वैसे ही पिछले आदम खुदावंद यसु अल मसीह की जब पसली को छेदा गया, उसकी पसली में नेजा खबोया गया, उसे छेदा गया और वहां से क्या हुआ जी, कलीसिया पैदा हुई। उसने अपनी पसली में से, पसली पर जब नेजा मारा गया तो क्या हुआ है कि वहां से एक बदन होने के लिए खुदा ने क्या किया है जी, कलीसिया को क्या दिया है, नया नाम, नई अकल, नई पहचान, नया दर्जा, नया मर्तबा दिया है। इसीलिए पालूस रसूल कहता है कि अगर एक अजू इज्जत पाए तो सब अजा उसके साथ खुश होते हैं। मिसाल के तौर पर कल की बात है, एक बेटी जिसने, जो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, बड़ी अच्छी सैलरी कमाती थी, क्या हुआ उस पर किसी मुस्लिम नौजवान का दिल आ गया और वो उसे मजबूर करना शुरू करता है कि तू मुझसे शादी कर, और उसे मजबूर करते वो क्या कहता है कि इस्लाम को कबूल कर। और उस मसीही नौजवान लड़की ने उसकी इस दावत को, इस मजबूरी को, और मजबूरी जो उसको मजबूर किया जा रहा था, उसने इस बात को नहीं माना। तो उस जलील इंसान ने क्या किया, उस बदरू से भरे हुए नाफरमान बंदे ने क्या किया, उस मसीही लड़की के ऊपर क्या फेंक दिया, तजाब फेंक दिया और 90% उसका बदन, उसका चेहरा, सब कुछ जला दिया, क्योंकि उसने उसकी दावत को कबूल नहीं किया कि वो मसीहत को छोड़कर मसीहत का इनकार करे। सो जब उस बेटी को देखते हैं जो चार पांच दिन पहले इस वाकया को, उसको इसमें से गुजरना पड़ा कि उसका सारा बदन जल गया। कल वो सियालकोट के इलाका के रहने वाली थी, कल वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, कल वो मर गई है, शहादत पा चुकी है। सो उसके गम में बहुत से मसीहियों को दुख हुआ। साजिद मसीह को जब उन गवर्नमेंट के, हुकूमत के ठेकेदारों ने जब कानून अपने हाथ में लिया तो उसको दुख दिया, उसकी गर्दन की हड्डियां, उसके बाजू, उसकी टांगे और बहुत कुछ, जब उसने चौथी बिल्डिंग से छलांग लगाई अपनी जान बचाने के लिए तो उसे दुख हुआ। तो उसके दुख में तमाम मसीहियों को क्या हुआ, दुख हुआ। जब चर्चेज को जलाया जाता है तो क्या होता है, हम सबको दुख होता है। जब बेइंसाफी की जाती है हम सबको दुख होता है, क्योंकि हम क्या हैं जी, जो एक थे अब दो एक हो गए हैं। पालूस यही कहता है कि जब हमारे बदन का एक हिस्सा दुख पाता है तो सारे बदन को दुख लगता है। वैसे वो कहता है जब कलीसिया में, कलीसिया मेंबर को दुख लगता है तो सबको दुख लगता है। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे क्रिस ने बताया कि आप सब ने इस दुख को महसूस किया और भाई बरकत के लिए हदिया उठाया कि उसके लिए क्या किया जाए जी, उसकी मदद की जाए। ये है मसीह का बदन, यानी के दो के अदद का मायनी, के एक का दो जो थे एक हो जाना। इसीलिए 27वीं आयत में पालूस कहता है इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अजा हो। सो दो का अदद हमें क्या सिखाता है जी, एतहाद, एतफाक, यूनिटी, और क्या हो जाना, एक हो जाना या शादी। सो जब यहां पर खुदावंद यसु मसीह ने भेजा है, जब खुदावंद यसु मसीह ने यहां पर शगिर्दों को दो दो करके भेजा है तो उसके पीछे जो रूहानी असूल है वो ये है कि दो की गवाही सच मानी जाती है। इन सत्रों ने क्या देखा है, 70 के 70 शिगिर्दों ने यसु मसीह के मौजजात को देखा है, यसु मसीह को देखा है कि वो किस तरह शफा देता है, किस तरह मुर्दों को उसने जिंदा किया, किस तरह उसने तूफान को थमा दिया, किस तरह उसने 5000 سے زیادہ لوگوں کو پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے سیر کر دیا، یعنی کہ انہوں نے وہ تمام معجزات دیکھے اور وہ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اس کی معجزانہ قدرت کے کہ خدا جسم میں کیا ہوا ہے، مجسم ہوا ہے، وہ خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے کہ دنیا کو گناہوں سے آزادی دے، دنیا کو ان کی ابتری سے اور اس مزولی یعنی کہ آدم کے گناہ سے نکالے، تو اس نے ان ستروں کو کیا دیا ہے، پیغام دیا ہے۔ اور یسوع مسیح 70 شاگردوں کو بھیج کر پیغام کیا کرتا ہے، پیغام کیا کرتا ہے کہ فصل کے مالک سے کہو کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج دنیا کے بہت سے خطے، بہت سے بر اعظم، بہت سے ملک، بہت سے دار و خلافے، بہت سے شہر، بہت سے گاؤں، بہت سے قصبے ہیں جن میں ابھی تک یسوع مسیح کے نام کی منادی نہیں ہوئی۔ سو یہ دو دو کی جو ٹیم ہے کیا کرتی ہے، جا کر یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے۔ اور اس کے پہلے آگے ہم سیکھیں دو کی گواہی کیا مانی جاتی تھی، جی سچ مانی جاتی تھی پرانے عہد نامہ کے مطابق۔ نئے عہد نامہ کے مطابق پالوس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پرانے اور نئے عہد نامہ کے مطابق کیا ہے جی، دو کی گواہی کیا مانی جاتی تھی جی، سچ مانی جاتی تھی، جس میں ہم پہلا تیموتھیس جب 5 باب اس کی 19 آیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں پہلا تیموتھیس 5 باب اس کی 19 آیت میں جب دیکھتے ہیں، جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سننا۔ کوئی بھی دعویٰ کلیسیا میں، عدالت میں، پرانے عہد نامہ کی اس جماعت میں جب کوئی کیا جاتا تھا تو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب یسوع مسیح کے پاس اس بیچاری عورت کو لے کر آئے جس پر الزام کیا تھا کہ یہ عین فیل وقت کے وقت کیا ہے جی، برائی کرنے کے وقت پکڑی گئی ہے، موسیٰ کی شریعت کے مطابق کیا کیا جائے جی، اسے سنگسار کیا جائے، پتھروں سے مارا جائے۔ تو یسوع مسیح نے جب دیکھا تو صرف وہ ایک عورت کو لے کر آئے ہیں۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ وہ مرد کہاں پر گیا، جس سے مجھے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، صرف یسوع کو ازمانے اور پھنسانے کے لیے بات کر رہے تھے، اور یسوع نے ان کے دھتیاں اڑا دی جب ان سے کہا کہ تم میں سے ہر کوئی پہلا پتھر اسے وہ مارے جس نے پہلے گناہ نہیں کیا، اور وہ سب کے سب وہاں سے نکل گئے۔ اسی طرح تیتس تین باب میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کی 10 آیت میں پھر پالوس رسول اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے جب ہم کو بھی کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہو، کلیسیا میں کوئی شکایت ہو، یہ نہ سنے کہ آپ اپنے بچے کی سن کر پھر اپنے رشتے دار کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ 2 گواہ یا 3 ہونے ضرور ہے۔ سو تیتس تین باپ اس کی 10 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر پالوس رسول پھر کہتا ہے تیتس اس کا 3 باپ اس کی 10 آیت میں جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جی 10 آیت یہاں پر لکھا ہے جی 10 آیت میں کہتا ہے کہ جی میں یہ بات سچ ہے اور ماننا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کا یقینی طور پر دعویٰ کریں تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں۔ یہ بات بھلی اور آدمی کے واسطے فائدہ مند ہے۔ اور 10 آیت میں وہ کیا کہتا ہے جی، 10 آیت میں وہ پالوس رسول کہتا ہے 1-2 بار نصیحت کر کے بدتی شخص سے کیا کرو جی، کنارا کرو۔ 1 یا 2 بار بدتی شخص کو کیا کرو جی، نصیحت کرو، اگر نہ مانے تو پھر اس سے کیا کر لو جی، کنارا کر لو۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ 2 یا 3 گواہوں کی شہادت مانی جائے۔ سو اس لیے یہاں پر یسوع مسیح نے جب 2 شاگرد بھیجے ہیں تو اس نے ان کو گواہی دے کر بھیجا ہے، جس میں سے آج جو ہم سبق سیکھیں گے، ان کو بھیجا کیا ہے جی، ان کو بھیجا ہے 2-2 کر کے بھیجا کہاں پر ہے، دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ بھیجتا ہوں۔ कोई भी ऐसा पासबान या चौपान नहीं है, चाहे फलस्तीन में चले जाएं, इसराइल में चले जाएं, कि वो अपनी भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान अकेला छोड़ दे। यहां पर जब यीशु ने दो दो भेजे हैं तो दूसरी बात सीखने वाली है, वो रूहानी तौर पर उनके साथ था, अपने इख्तियार, अपने मौजजात, अपनी कुदरत के बायस। इसलिए आज मैं इस बात पर गौर दिलवाना चाहता हूं कि दो दो क्यों भेजे, ताकि दोनों, पुराने अहदनामा में वाज की किताब में लिखा है एक से भला दो, और अगर तीन हो तो वो सबसे क्या होंगे, मजबूत होंगे। मैं चाहता हूं कि आज जो बेटे हैं वो अपने लिए अपना ऐसा रूहानी दोस्त ढूंढें जो आपके मसीही सफर में आपका मददगार हो। वैसे ही रूहानी तौर पर जो बहनें यहां पर बैठी हैं, अपनी कोई सहेली, अपनी मसीही दोस्त, मसीही बहन बनाएं जो आप एक दूसरे के लिए, जैसे कहते हैं ना, छुरी छुरे को तेज करती है, लोहा लोहे को मारता है, वैसे ही आप भी बहनें एक दूसरे के लिए रूहानी सलाहकार बन सकें, एक दूसरे की रूहानी मदद कर सकें, एक दूसरे को खुदा के कलाम की क्या कर सकें जी, गवाही दे सकें, एक दूसरे के लिए रूहानी बरकत का वसीला बने। ठीक वैसे ही तमाम मर्दों के लिए, ये मेरी नसीहत कह लें, हुक्म कह लें, आज गुजारिश कह लें कि आप भी अपना कोई रूहानी दोस्त ढूंढें, ताकि दो क्या है जी, एक से भले हैं, और दो, एक और एक को मिलाया जाए तो दो भी बनते हैं और वो ग्यारह भी होते हैं। तो हम इसमें से जो आज सबक सीख रहे हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने रूहानी दोस्त के साथ, रूहानी मसीही हम खिदमत, बहन, भाई, बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, टोला बनाएं अपना, जिसमें आप इन अबादतों के अलावा एक दूसरे के खानदान के साथ चाय के वसीला से, बाइबल स्टडी के वसीला से, दुआ के वसीला से, हमदर्दी के वसीला से क्या कर सकें जी, रहनुमाई कर सकें। सो आज जो सीखने का सही मकसद सिखाने का ये था, दो का अदद क्या है, एतहाद और इत्तफाक की तस्वीर है। हम इसे अपनी जिंदगी में लें, ताकि जब हम यीशु के काम को निकलें, जब हम यीशु की बिसारत को निकलें, जब हम अपने खानदानों को रूहानी तौर पर तामीर करें, तो हम अगर एक गलत हो तो दूसरा उसे दुरुस्त सिमत में लेकर जाने वाला बने, ताकि हम सब कहें कि हमने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। दाऊद और यूनतन, जो सौल का बेटा था, वो दोनों जिगरी यार थे। आप वैसे एक दूसरे के रूहानी जिगरी यार बने कि एक दूसरे पर जान भी लुटानी पड़े तो लुटा दें। पुराने अहदनामा में रूथ और नयोमी, उसकी पिछली दो बहुएं उसको छोड़कर चली गई, रूथ और नयोमी वो क्या है, रूहानी सतून है, वो तमाम औरतों के लिए मिसाल हैं। आप भी एक दूसरे के लिए रूथ और नयोमी बने, ताकि आप कहने वाले बने कि जहां कहीं तू जाएगी मैं जाऊंगा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। आए हम खुदा के जुर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, इस कलाम के वसीला से हम सबको हिकमत और दनाई दे, ताकि हम इत्तफाक की, एतहाद की और खुदावंद खुदा एक होने की कुदरत को जाने, जैसे तू खुदावंद खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस में तीन होने के बावजूद एक हो, खुदावंद हम कलीसिया भी एक हो, ताकि एक दूसरे के दुख, दर्द, सुख, मुसीबत, खुशहाली में, बखबख्ती में और खुदाम खुदा हर तरह की आजमाइशों में एक दूसरे के लिए खुदाम खुदा वसीला ठहरे। जैसे पालूस कहता है कि सब मुझे छोड़ गए और लूका आया और उसने मेरी तमादारी की, हमें भी खुदावन हमारी जिंदगियों में लूका की तरह खुदावन खुदा दोस्त दे, दाऊद की तरह यूनतन दे, खुदावन खुदा बेटियों के लिए रूथ और नयोमी की तरह खुदावन खुदा ऐसी खुदाओं खुदा बाबरकत बहने दे, ताकि वो एक हों। यीशु के नाम में सब कुछ बड़ी बरकत दे, ये दुआ मांगता हूं, आमीन।